ओम शांति। आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। कभी सोचा है कि सुनने में भी कोई कला हो सकती है? मुझे ये टॉपिक मिला था उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुनने में भी कोई कला होती है। तो जो लर्निंग आउटकम आज के हैं, एक तो व्हाट इज लिसनिंग, सुनना होता क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, कितना जरूरी है ये हमारे लिए और कितना महत्वपूर्ण है। व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम लिसनिंग, मतलब ऐसा क्या है जो हमारे को सुनने से रोकता है, कौन से बैरियर हमने खड़े कर रखे हैं। और फिर जब ये सब जानने के बाद उसकी रेमेडी, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, कि सुनना कैसे है, क्या चेंजेज हमें लाने। इंग्लिश में दो वर्ड है, हियरिंग एंड लिसनिंग, और हिंदी में एक ही वर्ड है, सुनना। तो व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग क्या होता है, लिसनिंग क्या होता है? हियरिंग माने खाली सुनना और लिसनिंग माने समझना साथ में। और हिंदी में फिर एक ही वर्ड क्यों है दोनों के लिए, या कोई दूसरा वर्ड है लिसनिंग के लिए? श्रवण इज सिनोनिम सुनना, ध्यान से सुनना, एक वर्ड होता है ध्यान से सुनना। एक्चुअली हमारे जो बहुत पुराने जो जितने धर्म स्थापक और बड़े बड़े फिलोसफर रहे ना, उन्होंने बोला है ध्यान से सुनना, मत ध्यान और सुनना दोनों एक ही चीज है। जिसको ध्यान करना आ गया मतलब उसे सुनना आ गया, या जिसने सुनना सीख लिया मतलब उसे फिर ध्यान की जरूरत ही नहीं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कहानी से, है ना। बहुत कहानियां सुनते हैं आप लोग, ये भी सुनी हुई होगी, सबने सुनी होगी क्योंकि व्हाट्सएप इंटरनेट पर बहुत चलती है। एक बहुत ही अमीर आदमी होता है, तो वो अपने बच्चे को ये बताना चाहता है कि गरीबी क्या होती है। तो वो उसको एक दिन एक गांव में लेकर जाता है ये बताने के लिए गरीब लोग कैसे जीते हैं। तो प्लान करता है, उसको लेकर के गांव में एक जाता है, वहां पर एक गरीब, मतलब तथाकथित गरीब जो वहां के हिसाब से गरीब है, उसके फॉर्म हाउस पर रहते हैं जाके। क्योंकि वैसे तो फॉर्म हाउस गरीबों के पास कहाँ होते हैं, पर उसके यहाँ जाके रहते हैं वो। तो वहां पर वो दो तीन दिन बिताते हैं दोनों बाप बेटे। फिर दो तीन दिन बाद वो वहां से वापस आ रहे होते हैं। तो फादर बेटे से पूछता है कि बेटे कैसा था ट्रिप? तो बच्चा बोलता है फंटास्टिक, बहुत अच्छा ट्रिप था। तो फादर बोलता है कि अच्छा बताओ तुमने क्या सीखा इतने दिनों में। वो सुनना चाह रहा है कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, इसने देखी या नहीं गरीबी कैसे होती है। तो बोलता है पापा मैंने बहुत कुछ सीखा। बोले क्या? बोले हमारे घर में एक डॉग है, उनके पास चार डॉग है। हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके पास पूरी एक क्रीक है खाड़ी, जिसका कोई एंड ही नहीं है, जिसमें वो कितना भी दूर तक तैर सकते हैं। बोले हमारे घर में इम्पोर्टेड लैंटर्न है जिनकी लाइट रात को हम जलाते हैं, और उनके पास स्टार है, चंद्रमा है। हमारे घर का जो एक छत है वो थोड़ा छोटा सा एक टेरेस है जो कवर करता है, उनके पास पूरा हॉरिजन है, पूरा स्काई है उनके कवर करता है। हम घर में सर्वेंट रखते हैं अपनी सेवा के लिए, वो दूसरों की सेवा करते हैं। हम अपना खाना खरीद कर बनाते हैं, वो अपना खाना खुद उगाते हैं। फादर एकदम चुप रह गया, मतलब उसे लगा कि क्या पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया ना, वो क्या सुनना चाह रहा था और उसने क्या देखना चाह रहा था, क्या देखा है। तो बोलता है थैंक यू पापा, आपने मुझे सच में बताया कि हम लोग कितने गरीब हैं। तो ऐसे ही सुनने में, हम क्या सुनना चाह रहे हैं, दूसरा क्या सुनना चाह रहा है, पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि हम कितना अटेंशन दे रहे हैं। तो हियरिंग इज एक पैसिव प्रोसेस है, सिंपल आवाज आई हमारे कान में गई, कान में जो हमारी हेयर सेल है उन्होंने एक नर्व इम्पल्स जनरेट किया और ब्रेन को दे दिया। बस दैट्स ऑल, दैट इज हियरिंग, फिजिकल प्रोसेस. लिसनिंग इससे काफी आगे है. लिसनिंग मीन्स हियरिंग विथ ए थॉटफुल अटेंशन, या जो भी हमने सुना उसको पहले रिसीव करना, फिर उसको टोटल जो एक तो वर्बल रिसीव जो मुंह से बोला गया वो सुनना, दूसरा नॉन वर्बल मैसेज जितने भी होते हैं, लाइक मैं जब बोल रहा हूं तो मेरा हाथ क्यों चल रहा है, मेरी बोलने की टोन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब चीजें भी लिसनिंग में आती है. तो इन सबको लेना, उनको समझना, मीन्स अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करना, उसके बाद उसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करना और फिर उसका एक रिस्पॉन्स निकालना, ये सारी की सारी प्रोसेस को लिसनिंग कहते हैं. अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये सारी जो प्रोसेस है वो एक लीनियर वे में हो, कि पहले सुनना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, फिर इंटरप्रिटेशन निकालना, फिर इवेल्युएट करना, जरूरी नहीं है. ये चारों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चलती है. वाई लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट देन हियरिंग, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मतलब ये बॉडी लैंग्वेज जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्यों जरूरी है. लाइक किसी ने बोला, किसी ने मुझसे पूछा कि आप कैसे हो, और मैं बोल रहा हूँ बहुत ठीक है, अच्छा चल रहा है, या फिर आंखों में आंसू लेकर के कोई बोल रहा है कि अच्छा चल रहा है, तो देन यू अंडरस्टैंड कि वो जो बोल रहा है और व्हाट ही रियली मींस, उसका वास्तव में मतलब क्या है वो अलग है. तो लिसनिंग में दोनों कंपोनेंट होते हैं, एक फिजिकल सुनना प्लस आंखों से देखना, दोनों को मिलाकर के जो इन्फेरेंस हम निकालते हैं दैट इज लिसनिंग. अभी है कि लिसनिंग के बारे में थोड़े से फैक्ट्स जानते हैं. लिसनिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि जब से इंसान पैदा होता है, जब पहला मतलब इस दुनिया में पहली बार आता है, तो सबसे पहली चीज जो है ना वो क्या करता है, सिर्फ सुनता है, रोता है. हमारी जिंदगी का टोटल जिंदगी हम जितनी भी जीते हैं उसमें सोने का टाइम हटा दो, जितने टाइम हम जागते हैं उसमें से करीब 50-80% पार्ट हम लोग कम्युनिकेशन में व्यतीत करते हैं, मतलब या तो एक दूसरे से बात करने में, सुनने में, कम्युनिकेशन के जो भी एस्पेक्ट हैं उसमें रिपीट करते हैं, और उसका भी 50% जो पार्ट है वो सुनने में जाता है. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज लिसनिंग, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सिर्फ सुनने में जाता है. इसके बावजूद भी जबकि मालूम है हमारी जिंदगी का इतना बड़ा पार्ट है ये, फिर भी जो लिसनिंग को ना सबसे कम रिस्पेक्ट दिया गया, सिखाया भी नहीं जाता हमारे को, जो कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन की आर्ट है उसको हमें कभी सिखाया नहीं जाता है, जबकि ये हमारी प्राइमरी कम्युनिकेशन एक्टिविटी है. हमें जो सुनने की आदत पड़ी हुई है वो एक्चुअली किसी ट्रेनिंग से नहीं आती हमें, बल्कि उसकी ट्रेनिंग ना मिलने का जो दुष्परिणाम है वो है हमारी सुनने की आदत है. इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर इनएफिशिएंट लिसनर. मोर देन 90% पीपल डोंट नो कि कैसे सुनना होता है, जबकि ये पता है कि अगर हम बहुत इनएफिशिएंटली सुनते हैं या इनएफेक्टिवली अगर हम सुनते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ती है. अभी दुनिया में जितने कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोर्ट में जितने केसेस चलते हैं, खासकर फैमिली कोर्ट में, उसमें आधे से ज्यादा का कारण यही होता है कि लोग सुनते नहीं है. उसमें सबकी जरूरत यही होती है कि मुझे सुना जाए, काउंसलर भी वही करते हैं, बस सुनते हैं और 50% केस रिजॉल्व हो जाते हैं. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है लिसनिंग के बारे में वो ये कि एक्टिव लिसनिंग या गुड लिसनिंग जिसे कहते हैं, अच्छा सुनना, वो हमें सिखाया जा सकता है, वो टीच किया जा सकता है. ये बात बहुतों को पता ही नहीं होती है कि सुनना भी सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है. हमारे जो कम्युनिकेशन होते हैं, संवाद जो हम करते हैं जिंदगी में, उसमें मेनली चार चीजें होती हैं, सुनना, दूसरी चीज होती है बोलना, तीसरी चीज जो हम सीखते हैं वो है पढ़ना, और चौथी चीज होती है लिखना. ये चार वे हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं. अब इसमें से जब हम देखेंगे तो जो सुनना है वो सबसे पहला काम है, सबसे पहले हम सीखते हैं सुनना, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चीज है वो भी सुनना है, जबकि जब इसको मतलब 45% जो होता है पूरा कम्युनिकेशन उसमें से सुनना ही होता है, और हमारे को जो सिखाया जाता है उसमें सबसे लास्ट नंबर पर है सुनना, दूसरे नंबर पर आता है बोलना। मतलब ये सेकंड नंबर है, जब हम सुनने के बाद जो सीखते हैं वो है बोलना, उसको भी यूज हम सेकंड नंबर पर करते हैं। मतलब वो 45% पार्ट हमारा सुनने में जाता है, 30% बोलने में जाता है, वो सेकंड नंबर पर निगलेक्टेड में। मतलब फर्स्ट नंबर पर सुनना निगलेक्टेड है, सेकंड नंबर पर बोलना। थर्ड आता है रीडिंग, जो कि हमें थर्ड नंबर है देखने में, लेकिन सिखाने में हमारे को वो सेकंड मोस्ट कॉमन है, और यूज करने में वो केवल 16% है। और लास्ट में आता है लिखना, जो कि हम सबसे लास्ट में सीखते हैं, सबसे कम यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा हमें पढ़ाया जाता है लिखना। तो ये हमारी लाइफ का एक ऑर्थोडॉक्स है कि जो चीज हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, मतलब सबसे ज्यादा सीखना चाहिए वो हम सबसे कम सीखते हैं, और जो सबसे कम सीखना चाहिए वो सबसे ज्यादा उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। और भी कुछ फैक्ट्स हैं लिसनिंग के, जैसे हम जब सुनते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है। तो जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उनके हिसाब से कोई भी जब एक मैसेज आपको बोला जाता है तो उसका 50% मीनिंग, 55% मीनिंग जो है वो बिना बोले ट्रांसलेट होता है। यानी मैं अगर कुछ आपको सुना रहा हूं अभी, तो जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो केवल 45% तक ही मैटर करते हैं, 55% मीनिंग मेरे बोलने का जो है वो मेरे बिना वर्ड्स के जो चीज है उनसे ट्रांसलेट हो रहा है। 38% मैसेज बोलने वाले की टोन पर डिपेंड करता है कि वो किस टोन से बोल रहा है, बोलते टाइम उसके बोली में उतार चढ़ाव कितने हैं, किस भाव से बोल रहा है। तो जो पूरा का पूरा मैसेज है उसका 38% पार्ट सिर्फ उसी से जाता है। और अगर केवल वर्ड्स को देखें तो पूरे मैसेज में से केवल 7% मैसेज जो है वो वर्ड्स के द्वारा ट्रांसलेट होता है, जिन शब्दों पर हम इतना ध्यान देते हैं वो केवल 7% मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए सुना होगा ना कि मुरली को हम कागज पर पढ़े, मोबाइल में पढ़े, मोबाइल पर सुने और सम्मुख बैठ के सुने, तो कितना अंतर है। इसलिए बाबा ने हमेशा क्या कहा, मुरली हमेशा सन्मुख और संगठन में। क्यों भाई, मुरली तो वही है ना, वही वर्ड्स हैं, वही मीनिंग है, तो फिर सम्मुख बैठ के सुनने का क्या मतलब है। एक तो यही कि हाँ बाप, केवल 7% मैसेज हमारे को मुरली का वो अगर हम मोबाइल पर पढ़ेंगे तो हमारे को मिलेगा, अगर हम सुनेंगे तो करीब 30% जो मीनिंग है वो हमको पहुंचेगा, और अगर हम सामने बैठकर सुनते हैं मीनिंग मुरली को तब जाकर के हमारे को एक बार में केवल 50% मीनिंग आता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जो लोग न्यूज सुनते थे उन पर एक सर्वे किया उन्होंने, बिल्कुल डेली न्यूज सुनते थे इवनिंग, तो उनका सर्वे किया गया कि ये लोग कितना रिटेन करते हैं एक बार में। तो जब उनकी रिकॉर्डिंग बाद में उनसे पूछा गया कि आज की न्यूज में क्या था, तो केवल 17.2% जो पार्ट था वो रिटेन कर पाए थे उसमें। और फिर जब उनको बता दिया क्या कि अब आपसे पूछा जाएगा, ये तो था बिना बताए, फिर जब उनसे बोला कि अब आपको पूछा जाएगा ध्यान से सुनना, तो भी 25% से ज्यादा कोई भी रिटेन नहीं कर पाया। तो मुरली को बार बार क्यों पढ़ना है, बाबा बोलते ना एक बार में मुरली से कुछ नहीं होता। अगर आपको बोल भी दिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी इस क्लास में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपसे वापस पूछूंगा, तो भी आप जब बहुत ध्यान देंगे तो 25% से ज्यादा एक बार में रिटेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुरली को बोलते हैं कि एक से ज्यादा बार पढ़ना है ना, दादी बोलती है कि मुरली कम से कम 8 बार, है ना, जानकी दादी बोलती है कम से कम 8 बार मुरली एक दिन में पढ़ना चाहिए, तब जाके रिटेन होगा ना। अभी तक ये बातें हमें सुनने में ऐसी लगती थी कि क्यों कहते हैं, है ना, बाबा क्यों बोलता है सम्मुख मुरली सुनने, अभी जब ये पढ़ा तो समझ में आया क्यों। एक और फैक्ट है कि जो एवरेज पर्सन है उसकी बोलने की जो स्पीड है वो है 125 से लेके 150 वर्ड शब्द पर मिनट, और जो हमारे कानों के सुनने की ताकत है वो है करीब 450 to 500, 450 to 500 वर्ड्स हम लोग सुन सकते हैं एक मिनट में, और जो हमारा दिमाग है वो 800 वर्ड्स तक एक मिनट में सुन सकता है। तो जब भी हम कुछ सुनते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा गैप होता है, मतलब 150 वर्ड्स की स्पीड पर कोई बोलेगा, उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो रिपीट करते हैं, सिनोनिम बहुत यूज करते हैं ना, एक ही वर्ड के 4-5 मीनिंग करेंगे, एक ही लाइन को 4-5 बार सुनाएंगे, तो उतने टाइम हमारा दिमाग जो है ना एकदम फ्री रहता है। अगर उस पार्ट को हमने प्रॉपरली यूज नहीं किया, वो भी सुनने की एक कला है, अगर उस पार्ट को हमने प्रॉपरली यूज नहीं किया तो वो हमारा बहुत लॉस करता है। उस समय हम फिर क्या करते हैं, मतलब दो तरह के लिसनर हैं, एक बैड लिसनर और एक गुड लिसनर, अभी हम उस पर आगे आएंगे। तो उस पार्ट को बहुत अच्छे से यूज करना है, उसका क्या करना है। लिसनिंग्स और लीडर्स, इनमें बड़ी समानता है ना। एक अच्छा लीडर अगर किसी को बनना है तो उसको सुनना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। लीडर्स की क्या क्वालिटी होती है सुनने के मामले में, मतलब और नहीं पैसे तो बहुत क्वालिटी है, बस संवाद के मामले में लीडर्स की क्या क्वालिटी है, महत्व तो देते हैं एक तो, हाँ वो सुनते हैं अच्छे से, और क्या, बात समझने की कोशिश करता है, और जो लीडर्स होते हैं ना वो हमेशा ओपन माइंड से सुनते हैं, कभी बायास्ड होके नहीं सुनते किसी को। अच्छा लीडर अगर है तो किसी को भी, किसी की भी बात को, मतलब दो लोगों का अगर कोई कंफ्लिक्ट भी सुन रहा है तो वो दोनों को अलग अलग पूरी तरह सुनेगा, कभी भी बायास्ड होके नहीं सुनेगा और बिना इमोशनल हुए सुनेगा। लीडर को आप कुछ भी सुना लो, अपनी जिंदगी का दुख से दुख और अच्छे से अच्छा, वो कभी इमोशनल या डिफेंसिव होके नहीं सुनेगा। तो ये उनकी बड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और एक स्टूडेंट्स के साथ लिसनिंग का है, लिसनिंग और शिक्षा, मतलब सुनना और शिक्षा। जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि जो सुनना है वो एक कला है और एक एक्टिव प्रोसेस है जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब क्लास पूरी होती है और उनको बोला जाए कि कुछ बोलो कैसी थी क्लास, तो क्या करते हैं, क्या इजी होता है उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ उनके लिए सबसे ज्यादा इजी होता है स्पीकर को क्रिटिसाइज करना, क्योंकि स्पीकर का जो मैसेज है वो तो सुनना ही नहीं उन्होंने, है ना, उसकी तो उन्हें आर्ट ही नहीं आई समझ में कि वो स्पीकर का मैसेज मुझे कैसे सुनना था। तो अगर उनसे पूछा जाए तो वो स्पीकर के मैसेज को क्रिटिसाइज कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्पीकर को क्रिटिसाइज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। ये तो वो जल्दी जल्दी बोलता है, ये वही बात रिपीट कर रहा था, इसको तो बोलने का ढंग नहीं आता, हाथ ज्यादा चला रहा था, है ना, इधर उधर देख रहा था। हाँ, तो उनको स्पीकर को क्रिटिस, क्योंकि उन्होंने सुनने की आर्ट ही नहीं मालूम है, तो वो सुनते नहीं है, वो स्पीकर को क्रिटिसाइज आराम से करते। और जब कुछ डॉक्टर बैठे तो जो सुनना डॉक्टर से क्या रिलेशन है, डॉक्टर्स की जिंदगी में ना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पेशेंट की हिस्ट्री लेना, है ना, खासकर फिजिशियंस। तो पेशेंट की जो हिस्ट्री लेते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन की गई, तो 69% फिजिशियन जो हैं, जैसे ही पेशेंट बोलना शुरू करता है डॉक्टर को 18 सेकंड के अंदर उसको इंटरप्ट कर देते हैं, उसको बोलने नहीं देते हैं। इसलिए इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है, करीब 77% ऑफ द टाइम पेशेंट जिस प्रॉब्लम को लेकर आता है वो प्रॉब्लम वो एलिसिट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसको बोलने ही नहीं देते, इतना इंटरप्ट करते हैं बीच में, कोई टाइम नहीं होता उनके पास क्या चीज ये स्टैटिस्टिक्स सब दी हुई है, अवेलेबल है, जो रिसर्च चलती रहती है ना तो उसमें ये सारी स्टैटिस्टिक्स होती है। और जब वो दो तीन रिसर्च का जो एवरेज निकलता है या मेल जो ज्यादा कॉमन होता है उसको वो फैक्ट्स मान लेते हैं। तो अभी है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज लिसनिंग, हमारे लिए सुनना जरूरी क्यों है, तभी हम उसको समझेंगे ना उसकी आर्ट। अगर ये पता ही नहीं होगा कि इम्पोर्टेंट है तो हम सुनेंगे नहीं, कोई भी चीज हमारे लिए अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम कभी भी नहीं सुनते हैं। इसमें दो एस्पेक्ट है, एक साइंटिफिक एस्पेक्ट जो चल रहा है, दूसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, थोड़ा सा मिलाएंगे इनको दोनों को भी। तो लिसनिंग के बारे में महावीर जो है ना, महावीर ने और नानक, गुरु नानक, ये दो लोगों ने बहुत बोला है। बाकी बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं बोला है सुनने के बारे में, लेकिन इन दोनों ने बहुत बोला है। महावीर ने तो ये कहा है कि पार जाने के चार घाट है, वो उनको मोक्ष को ज्यादा करते थे ना, तो पार जाना है इस दुनिया के विषय वैतरणी नदी या जो भी हम बोलते हैं, तो उसके चार घाट है। एक है साधक, बहुत इजी है जो साधना का, एक साधिका। तो ये दो तो हमारे लिए भी बहुत इजी है सुनने में, कि साधन और साधिक, जो साधक और साधिका है वो पार करेंगे। दूसरा उन्होंने जो बोला है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सुनने में, कि श्रावक और श्राविका। मतलब अगर आप सुनना सीख गए जिंदगी में तो आप पार हो जाओगे। तो ऐसा लगता है हम तो जिंदगी से सुनते ही आ रहे हैं, फर्क क्या पड़ा? जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन फर्क कुछ पड़ा? कुछ पार हुए? अभी भी वहीं के वहीं है। तो वो क्यों नहीं होता है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे बैरियर्स हमने बना रखे हैं सुनने के, हम एक्चुअल में सुनते तो है ही नहीं। तो अभी जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है लिसनिंग के, पहले उनको डिस्कस करते हैं। मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज लिसनिंग। मतलब अगर किसी को आपको मान्यता देना है या किसी को रिस्पेक्ट देना है या मतलब किसी को ये बताना है कि यस यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो आप उसको ध्यान से सुनो, है ना। अगर आप लोगों को मुझे बताना है तो आगे ध्यान से सुनना है। मतलब मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नॉलेज, किसी के लिए भी रिस्पेक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि बाबा ने मुरली में कितनी बार बोला है, मतलब अगर आप मुरली ध्यान से सुन रहे हैं तो ये किसका रिस्पेक्ट है? बाबा का। दादी सुना रही है उसका रिस्पेक्ट, जो भी मुरली सुना रहा है उसका रिस्पेक्ट, और अल्टीमेटली सुप्रीम सोल, क्योंकि हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तो जितना ध्यान से सुनते हैं मतलब हम उतना उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है सुनने का, अच्छे ढंग से सुनने का, कि इससे ना जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग होती है। कॉपरेशन, सहयोग की जो शक्ति है उसको अगर डेवलप करना है आपको तो आपको सुनना आना चाहिए। अगर आप सुनेंगे नहीं तो सहयोग देना बड़ा मुश्किल है ना। कॉन्फ्रेंस अगर कोई कर रहा है, पूरे डिपार्टमेंट से अगर उसको सहयोग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसे जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, उनकी सुनना पड़ेगी। नहीं सुना तो पता चला लास्ट है माइक नहीं चलेगा, लास्ट है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो अगर सहयोग चाहिए, और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जब हम बात करते हैं किसी से तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, ओपननेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि मुझे मुझे रिस्पेक्ट मिला। मतलब उन्होंने आके मुझसे बोला सहयोग के लिए ऑर्गेनाइजर ने, तो उनको ये अच्छा लगता है, फिर वो जाकर के सहयोग करने तैयार होते हैं। सुनने का एक और जो फायदा था वो था एक्सेप्टेंस एंड ओपननेस। जो कि अभी जितना ज्यादा हम एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं तो उतना रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ता है, तो एक्सेप्टेंस भी हमारी उसके लिए बढ़ जाती है। एक और है, लिसनिंग लीड्स टू लर्निंग। मतलब सुनने से ही हम सीख सकते हैं। जैसे खुले मन से और खुले दिमाग से जब हम सुनते हैं ना, तभी हम कुछ सीख सकते हैं, तभी हम बदल सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम ज्ञान में आए तो हमने तो सुना था कि रामायण हुई थी, है ना, रावण था और राम था। बाबा आके बोलते हैं कि ये तो स्टोरी है। तो अगर हम अपना माइंड उस समय क्लोज रखेंगे कि नहीं ये कैसे कह सकते हैं, जैसे कि होता है जो लोग ज्ञान में नहीं चल पाते हैं कई बार, इन पर से बोले वो तो कह रहे हैं रामायण की स्टोरी है, जबकि हमने तो सुना था, हमारी मान्यता इतनी सख्त है उसको लेकर के कि रामायण तो हुई भाई, राम हुआ रावण हुआ। बाबा बोलते हैं राम रावण जैसा एट ए टाइम कुछ हुआ ही नहीं, तो बाबा ने उसका इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दिया। अगर उस समय हम अपना माइंड ओपन नहीं रखेंगे सुनने के लिए, हमारे जो पुरानी मान्यता है उन्हीं पर रहेंगे, तो हम कभी भी सुन नहीं सकते, फिर अपने आप को हम कभी भी बदल नहीं सकते, हम सीख नहीं सकते। तो अगर अपने आप को बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रूपांतरण करना है, तो उसके लिए सुनना, ओपन माइंड से सुनना बहुत जरूरी है। हमारे जो पहले से ही मान्यता बनी है उन पर रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होना है। एक और जो फायदा होता है अच्छे से सुनने का, कि सुनने से जो स्ट्रेस और टेंशन है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप ही चली जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो जो स्ट्रेस और टेंशन उसकी वजह से होते हैं वो कम हो जाएंगे। एक और जो सुनने का फायदा होता है कि कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कोई विवाद हो गया दो लोगों में, वही मैंने बताया जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में जो आजकल हस्बैंड वाइफ के जो केसेस आते हैं उसमें 50% केसेस सिर्फ सुनने से रिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मेन कंप्लेंट ये होती है कि ये सुनते नहीं है मुझे। दोनों की यही कंप्लेंट होती है कि सुनते नहीं है, घर पर बोलते दोनों रहते हैं पर सुनता कोई नहीं है। तो फिर काउंसलर क्या करते हैं, बस उनको सुनते हैं, दोनों की सुन लेते हैं, उनका सब कुछ शांत हो जाता है और 50% केसेस सुनने से ही रिजोल्व हो जाते हैं। तो अच्छी तरह सुनने से कंफ्लिक्ट भी रिजोल्यूशन होता है। कुछ कोटेशंस हैं, दो तीन फास्ट करेंगे। जो मोस्ट बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की वो है नीड टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। सब ये चाहते हैं कि हम समझे, हमारे को दूसरे समझे और फिर हम उनको समझे। एक्चुअली पहले ये होना चाहिए कि आप दूसरों को समझो फिर वो आपको समझे, और उसके लिए जो लिसनिंग है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना, राल्फ निकोल्स ने बोला है। एक और बंदा है ग्लीन डेविड हैरिस, जो कि लिसनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इसको 1999 में, वही इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है लिसनर्स की, तो उन्होंने उसको अवार्ड दिया था। तो उसने एक कोटेशन दिया था कि व्हेन यू हैव लर्न हाउ टू लिसन, अगर आपने जिंदगी में सुनना सीख लिया और कैसे सुनना ये सीख लिया, तो दैट मीन्स यू हैव लर्न एवरीथिंग यू नीड टू नो इन लाइफ। इसका मतलब आपने जिंदगी में जितनी भी जो भी चीज की जरूरत है वो आपने सीख लिया, इतना इम्पोर्टेंट था। एक और कोटेशन तो बहुत सारे हैं कि एक पार्टिसिपेंट्स को एक बार बोला, एक यंग फीमेल थी, उसको बोला कि आओ एक डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, एक परिचर्चा में आपको भाग लेना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप अलग बैठ के सुनना पसंद करोगे या परिचर्चा में भाग लोगे। तो वो बोलती है नहीं मैं सुनना पसंद करूंगी। तो उससे पूछा क्यों, बोले मैं परिचर्चा में भाग लूंगी तो जो मुझे आता है मैं वही बोलने वाली हूँ और मैं पूरे टाइम उसी पर कंसंट्रेट करूंगी तो मैं सीखूंगी कुछ नहीं, बाहर बैठूंगी तो कम से कम मैं वो सीखूंगी जो मुझे नहीं आता है। तो लिसनिंग इज दैट इम्पोर्टेंट। अभी याद है कि हमारे को सुनने से क्या क्या चीजें जो हमारे को सुनने में बाधा डालती हैं, या हमने जो बैरियर खड़े कर रखे हैं, या जो हमारी बैड और पुअर लिसनिंग हैबिट्स हैं, अभी उन पर चर्चा करेंगे। बैरियर्स में सबसे पहला आता है व्हेन वी इक्वेट लिसनिंग विद हियरिंग। हम मतलब क्लास में भी बैठे हैं लेकिन हम बस ध्यान से सुनने की बजाय सिर्फ सुन रहे हैं, मतलब आवाज आई और जा रही है, आवाज आई और जा रही है, जिसे बोलते हैं हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल रहे हैं, तो वो बैरियर है। फिर टॉपिक अनइंटरेस्टेड है, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये जो टॉपिक है इसमें कुछ नहीं रखा है, मजा नहीं आ रहा, तो फिर हम कभी भी उस टॉपिक को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। स्पीकर की डिलीवरी कैसी है ना, कई बार ये होता है कि किसी को, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अभी, किसी को यहाँ बैठा है उसको हिंदी नहीं आती, या मैं मराठी में बोल रहा हूँ किसी को यहाँ मराठी नहीं आती, तो वो भी एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना, हम लोग बैठे यहाँ क्लास कर रहे हैं, बाहर कोई हॉर्न बज रहा है या बाहर कोई टीवी चल रहा है, बहुत जोर शोर से गाड़ियां निकल रही हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी कई बार सुनने में बैरियर बन जाते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्शन जिम्मेदार है, जो अच्छे लिसनर है वो इसको ओवरकम करते हैं। अभी हम उतने आ रहे हैं हैबिट्स में। एक कोई मेंटली प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्स है ना, पहले से ही कुछ रिस्पॉन्स बना के बैठे, आर्ट ऑफ लिसनिंग इसमें क्या है, इसमें है क्या, सुनने में भी कोई कला होती है। हमने पहले से ही अगर एक रिस्पांस बना लिया तो फिर जो भी स्पीकर बोल रहा है हम उसको कभी ध्यान से सुनेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारा ईगो बीच में आता है, पर्टिकुलरली जैसे आप बैठे हो और मेडिकल का कोई सब्जेक्ट है, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई नॉन मेडिको आके मेडिकल सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, तो उसका ईगो क्लैश होता है, चलेगा अरे ये देखो ये हमारे को मेडिकल की बातें बता रहे हैं, है ना। कुछ जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं उनको लगता है कि ये देखो हमारे को ज्ञान सिखाने आ रहे हैं, तो ये अपना ईगो कभी बीच में आएगा तो एक बहुत बड़ा बैरियर है। कई बार जो हमारे पर्सनल आइडियाज है ना वो भी सुनने में बड़ी बाधा डालते हैं, अगर हम अंदर से अपने आप को शांत करके नहीं सुनेंगे तो हम जो भी स्पीकर बोल रहे हैं ना उसकी डिलीवरी को बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेते। ये तो जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है जो इस तरह के, ये सब आपको पता भी होंगे। जो आध्यात्मिक रूप से जो दो चीजें थी ना कि हम क्यों नहीं सुनते, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो उसमें ये है कि सबसे पहला जो बैरियर है कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहते जो कि हमसे मेल नहीं खाता है। जब भी हमको जैसे सुनाया जाता है, हम कहीं गए सुनने किसी लेक्चर में, अगर हमें हम अपनी पहले से प्री डिसाइडेड हमारी कुछ मान्यता है, बिलीफ सिस्टम है, हम उसके बियॉन्ड जाते नहीं। जैसे एक एग्जांपल था ना अभी रामायण का, कि बाबा ने बोला कि रामायण तो एक कहानी है, महाभारत सिर्फ एक कहानी है, तो बहुत से लोग तो ज्ञान तुरंत छोड़ के उसी टाइम चले गए, क्योंकि वो मानने ही तैयार नहीं थे कि ये कहानी भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से सुना है भाई ऐसा हुआ है कृष्ण द्वापर में आए और ये लड़ाई लड़ी, और फिर बाबा ने आके बोल दिया कृष्ण तो कभी द्वापर में आए ही नहीं, तो वो इस चीज को बिल्कुल सुनने ही नहीं चाहते। उनके अंदर मान्यता बनी हुई है कि वो तो द्वापर में आया था, और उससे मेल नहीं खाया तो वो सुनते नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके अंदर ऑलरेडी है ना। एक हिंदू होगा तो वो वही सुनेगा जिससे उसका हिंदुत्व कट्टर हो जाए, है ना। एक मुस्लिम है तो वो वही चीजें सुनेगा जिससे उसका मुस्लिमनेस कट्टरनेस हो जाए, है ना। सिख आएगा तो वो वही सुनना चाहेगा जिससे उसकी सिख वाली धारणा अच्छी हो जाए, बाकी आप उसे कुछ भी सुनाओगे तो वो सुनना नहीं चाहता। तो ये जो बैरियर हमने अपने अंदर खड़े कर रखे ना, ये हमारे को कभी सुनने नहीं देते। और ये बैरियर आते कहां से, हम जब से पैदा होते हैं हमारे ऊपर ना कंटिन्यूअस विचारों का बम्बार्डिंग होता रहता है ना। हर दुनिया में हर कोई सुनाने में लगा हुआ है, सब सुनाने में लगे हुए हैं, और हमारे ऊपर पूरे टाइम उसकी बम्बार्डिंग होती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बफर्स तैयार करते हैं, हमारे अंदर से वो बफर्स हो जाते हैं। बफर्स बहुत सूक्ष्म तत्व है ना, हमें पता ही नहीं चलता है, हमें वो दे आर लाइक की जो ग्लास की कोई दीवार है, हम देख रहे हैं बाहर आसमान है बहुत अच्छा, चांद तारे दिख रहे हैं, उनकी तरफ जैसे ही बढ़ना चाहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि बीच में दीवार है। जब तक हम उस दीवार से टकराते नहीं है हमें नहीं पता चलता कि दीवार है कांच की, क्योंकि वो इतना क्लीन कांच होता है। तो बफर्स जो होते हैं ना वो हमारे को सुनने नहीं देते। उन बफर्स को हम तोड़ते कैसे है, वो मतलब हमारे जो खुद के जो विचार है ना उनको भी वो अंदर नहीं आने देते, इतना टाइट गेट बना लेते हैं वो। तो जैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम साक्षी हो जाते हैं ना। जैसे बाबा ने बोला अपने विचारों को देखो कि मेरे मन में क्या उठ रहा है, उसको बैठकर देखो कि मन क्या कर रहा है, बच्चे की तरह मन को देखो, तो उसमें जो विचार है ना वो थॉट्स जो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो जैसे हम विचारों के लिए करते हैं वैसे ही हमारे को सुनने के लिए करना होता है। जब हम कभी बैठ जाते हैं साक्षी होकर देखते हैं तो धीरे 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 वो बफर्स जो है वो टूटने लग जाते हैं। जैसे ही बफर्स टूटते हैं तो हमारे को ना एक शांति की फीलिंग आती है, जो कि अध्यात्म जैसे ध्यान बोलते हैं। और जैसे ही हम उस शांति के गेट में से जाते हैं तो हमारे को सुनना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम सुनना शुरू करते हैं तो हम बहुत दिस इज द प्रोसेस। जो जितने भी अपने करीब अगर किसी को आना है या अध्यात्म के करीब जाना है तो उसके लिए यही एक प्रोसेस है। जितना हम अंदर से शांत होते जाएंगे बफर्स हमारे डाउन होते जाएंगे, हमारे अंदर सुनने की क्षमता बढ़ेगी, धीरे धीरे हमको शांति से फिर हम आनंद की तरफ चले जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि इतना आनंद से भर जाते हैं कि फिर हम दूसरों को सुनाने लग जाते हैं, तब वो आनंद खत्म नहीं होता है, फिर हम और सुनाते जाते हैं और सुनाते जाते हैं, लेकिन आनंद कभी खत्म नहीं होता। तो ये प्रोसेस है, इसी को प्रैक्टिस अगर करना है सुनने का तो वो यही है। दूसरा बैरियर जो था, एक तो ये हो गया कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को भाता है या जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, जो हमसे मेल खा रहा है, क्योंकि हम परिवर्तन नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम सुनेंगे दूसरा क्या बोल रहा है तो हम परिवर्तन हो जाएंगे, तो हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और एक और हैबिट है तंद्रांग हो जाना, है खासकर सत्संगों में देखा होगा ना, हम सो जाते हैं। मतलब सत्संगों में आप देखना भीड़, जिस आदमी को इंसोम्निया भी होगा ना उसे सत्संग में बिठा दो सो जाएगा, नींद ना आने की बीमारी अगर होगी वो भी आदमी सत्संग में सो जाएगा। ज्यादातर लोग सत्संग में सो जाते हैं, क्यों क्यों आनंद, ये भी एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। हम बचना चाहते हैं, जो सुनाया जा रहा है जो अच्छी बात आ रही है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, है ना। इसमें एक एग्जांपल था कि बहुत अच्छे पंडित जी हैं, इतने अच्छे कि मतलब उनका नाम है, जब वो सुनाने जाते हैं रामायण वगैरह तो मतलब बात मत पूछो, लाखों लोग उनको आते हैं सुनने के लिए। तो एक बार ऐसे ही उनके साथ थोड़ी घनिष्ठता थी तो उनके साथ रहना हुआ, तो रात को वो ये हुआ है कि चलो आज तो एक ही रूम में सोएंगे, आपका बिस्तर इधर हमारा बिस्तर इधर। तो बातें करते हुए सोएंगे। तो पंडित जी के साथ सो रहे थे, जब सब बात बात खत्म हो गई, लाइट बंद हो गई, तो पंडित जी की जो पत्नी थी वो अंदर आई कमरे में और पंडित जी के कान में कुछ बोला, पर चूंकि बड़ी शांति थी तो सुनाई पड़ गया क्या बोल रही है। तो उन्होंने बोला कि मुन्ना सो नहीं रहा है, उसको चल के कुछ कह दो तो सो जाएगा। तो पंडित जी बोले, मुन्ना सो नहीं रहा है तो मेरे कहने से क्या हो जाएगा। बोले, अरे मैंने देखा है आपकी सभा में लाखों लोग जैसे ही आप बोलना शुरू करते सो जाते हैं, तो मुन्ने की तो बिसात के उसको भी चार पांच वर्ड्स बोल तो सो जाएगा। तो ये भी एक तरह, हम लोग भी है ना उस तरह सो जाते हैं प्रोटेक्टिव, और जब तक हम जागेंगे नहीं है ना, चैतन्य नहीं होंगे तब तक हम सुन नहीं सकते। एक्चुअली वो जागना ही ध्यान है, वो चैतन्यता जो चाहिए सुनने के लिए वही एक्टिव लिसनिंग है और वही ध्यान है। तो इसलिए ध्यान और सुनना ऑलमोस्ट बराबर है, तो बहुत एलोबोरेट अभी नहीं कर रहे। दूसरा आता है बैड लिसनिंग हैबिट, मतलब हमारे अंदर अब ये लिसनिंग हैबिट की पूरी बैड लिसनिंग हैबिट की एक लिस्ट है, तो सबको जरा सुनना है और देखना है कि मेरे अंदर इसमें से कौन कौन सी है। सबसे पहली हैबिट है क्रिटिसाइजिंग द सब्जेक्ट और द स्पीकर। जैसे ही आपको बोला गया कि आज ये क्लास है, क्या रोज रोज वही क्लास लगा दी, हमने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, दिस इज वेरी बैड हैबिट। जब तक आप सब्जेक्ट को या स्पीकर, बोले अच्छा आज उन्हीं की क्लास है फिर आ गए, ये हमने शुरू किया तो फिर हम कभी भी अच्छे से ध्यान से सुन नहीं सकते। गेटिंग ओवर स्टिमुलेटेड, कई बार आपने देखा होगा लोग सुनते सुनते इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने स्टिमुलेट हो जाते हैं कि वो मुझे कुछ बोलना है, वो स्पीकर को बात पूरी नहीं होती है और उसको हाथ से इशारा करेंगे मुझे बोलना है, टेबल पर हिलने, अभी चेयर पर हिलने डुलने लग जाएंगे, उनको बोलने का इतना आएगा बीच में क्योंकि उनको अपने आइडियाज देने हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी बैड हैबिट। लिसनिंग ओनली फॉर द फैक्ट्स, कई बार हम जो होते हैं ना स्पीकर क्या बोलना चाहता है उसका पूरा आइडिया कभी नहीं सुनना चाहते, बल्कि उसमें जो फैक्ट्स है ना, एक तो लाइन जो हमारी सुनी हुई है जो हमसे थोड़ा मेल खा गई उनको सुनकर, और फिर हम उनके ऊपर ही उसमें इतना डूब जाते हैं कि बाकी स्पीकर ने क्या बोला है उससे हमारे को समझ में नहीं आता। तो जो पूरा स्पीच है उसका जो एक होल ब्रॉड आइडिया होता है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। टॉलरेटिंग और क्रिएटिंग डिस्ट्रेक्शंस, है ना, डिस्ट्रेक्शन एक तो ये होता है कि बाहर से आ रहा है, दूसरा ये है कि हम दो लोग पास बैठे हैं, एक को बिल्कुल टॉपिक में मजा नहीं आ रहा, वो आपको पिंच कर रहा है बार बार, वो पिंच कर रहा है, बातें कर रहा है, तो उनको बातों को टॉलरेट करना या खुद बातें करना, ये दोनों ही बहुत खराब है बेटे। फिर कभी कभी क्या होता है, किसी स्पीच में कोई इमोशनल वर्ड आ जाते हैं, तो इमोशनल वर्ड कोई आया और हम उसी पर हैंग हो गए, बस उसके बाद आगे की स्पीच क्या है पूरी पानी में गई, हमने सुना ही नहीं, उसे एक वर्ड में ही हम अटक के रह जाते हैं, तो वो भी दिस इज ऑल्सो वो भी एक खराब आदत है। फिर मैंने बताया कि हमारे जो एक स्पीकर बोलता है वो करीब 150 से 175 वर्ड्स में बोल सकता है, और कुछ उससे भी कम में बोलते हैं या रिपीट करते हैं, और हमारा जो कान है वो सुनता है 450 से 500, दिमाग जो है वो 800, तो बीच का जो गैप है उस टाइम को जो वेस्ट करते हैं वो कभी भी अच्छे लिसनर नहीं हो सकते। उस टाइम में क्या करना है वो भी एक्टिव लिसनिंग में आएगा, लेकिन उस टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। एक और है कि कुछ लोग सुनते नहीं है बट दे प्रिटेंड कि बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, फेक अटेंशन, आपकी तरफ देखेंगे बिल्कुल, आंख भी मिलाएंगे, हाँ भी करेंगे, कुछ तो बैठ जाएंगे, और फिर उनका पूरा टाइम ये चलता रहता है। तो ये प्रिटेंडिंग कि हम अटेंशन दे रहे हो, एक्चुअली इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर उनको नहीं सुनना है तो दे शुड गो रादर देन डूइंग ऑल दिस, क्योंकि जो थोड़े जो एक्सपीरियंस स्पीकर होते हैं ना वो थोड़े टाइम में समझ जाते हैं कि ना ये जबरदस्ती सारे ला रहा है या नोट कर रहा है, तो फिर वो स्पीकर भी डिस्टर्ब होता है। फिर आई ट्राइंग टू डू अदर थिंग्स, है ना, वाइल लिसनिंग, कभी देखा होगा स्वेटर ही बनते रहते हैं लोग, कभी देखा होगा मोबाइल पर कोई मैसेज आया तो वो पास कर रहे हैं, कभी बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देने लग जाते हैं लोग, मैंने ये भी देखा मुरली पढ़ा रहे हो, बीच बीच में कुछ ध्यान आया बोलो इनको बुलाओ इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो ये सब वो सुनने में, वो बोलने वाले का भी है लेकिन सुनने वालों को भी ये ध्यान रखना है कि बीच में जब आप सुन रहे हो तो दूसरा कोई भी काम बीच में नहीं होना चाहिए। फिर एक पहले से ही डिसाइड कर लिया कि जो सब्जेक्ट है आज का बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है ही नहीं है उसमें मेरे लिए कुछ भी। तो अगर हम ये पहले से डिसाइड करके आए तो कभी भी हम सुन नहीं सकते। फिर गेटिंग डिस्ट्रेक्टेड बाई स्पीकर्स, जैसे गेस्चर है, कोई ज्यादा हाथ हिला रहा है, किसी की लैंग्वेज कैसी है, या किसी का बोलने का तरीका बहुत फास्ट है, या कोई बहुत स्लो हो रहा है, तो इन चीजों से डिस्ट्रेक्ट होना इज ए बैड लिसनिंग हैबिट। फिर कभी कभी गेटिंग ओवर इन्वॉल्व्ड है ना, तो हम क्या कहते हैं किसी भी एक बात में कुछ बात चली, इसमें एक बात को बीच में पकड़ा और उसके ऊपर ही हम बहस करने लग जाते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ता जाता है कि जो ओरिजिनल टॉपिक था वो गायब ही हो जाता है कई बार, है ना, उस टॉपिक के ऊपर ही आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, तो वो भी ऑल्सो बैड हैबिट। फिर कभी कभी जो इमोशंस वाले जैसे वर्ड्स आ गए बीच में, लाइक कोई धार्मिक बातों पे बहुत होता है ना, जैसे आप सुनते होगे कि बोले फलाने नेता ने अपने ये वक्तव्य दे दिया, उसमें कुछ भी एक दो लाइन उसका भले उसका इंटेंशन ना हो पर उसके वर्ड्स को पकड़ करके और उनसे लोगों की भावनाएं बड़ी आहत हो जाती हैं, तो दैट इज ऑल्सो बैड लिसनिंग हैबिट। एंड देन टेकिंग नोट्स, कभी कभी नोट्स लिखने में लोग क्या करते हैं जब सुन रहे हैं, तो नोट्स लिखना चाहिए लेकिन नोट्स लिखने में कुछ लोग क्या करते हैं फॉर्म और सेंसेस में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि जैसे किसी ने 7 पॉइंट बोले तो पहली लाइन लिखने में ही पूरे इज आर एम बी वगैरह उनको प्रॉपरली लिखना है, पंक्चुएशन कॉमा लगाना है, तो उस चक्कर में दूसरी लाइन होगी, जब तक उन्होंने दूसरी सुनी तब तक 7वीं लाइन खत्म होगी, तो फिर उनकी बाकी की 5 लाइनें रह जाती है, तो उसमें बहुत रिजिड नहीं होना है। नोट्स लिखना है तो उसमें बड़ा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए जिससे कि आपका आगे का पॉइंट कभी भी मिस ना हो। एक होता है कि कभी कभी कोई टॉपिक है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा डिफिकल्ट है, तो हम सोचते हैं ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं सुनना। एक बार हमने अपने मन में ये बना लिया कि ये तो ऊपर से जा रहा है मेरे, तो फिर वो ऊपर से ही जाएगा, फिर वो आना नहीं है। जो अच्छे लिसनर होते हैं वो कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो उसमें से छांट लेते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो ये कुछ हैबिट है, अब इसमें से ये देखना है कि मेरे अंदर कौन सी है, उसकी लिस्ट बनाना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। ये आपको डिसाइड करना है। अभी तो हमने क्या सुना है कि व्हाट इज लिसनिंग, लिसनिंग के फैक्ट्स, थोड़े से कोटेशंस और क्या बुरी आदतें हैं लिसनिंग में। अब इसकी रेमेडी पर हम जाते हैं कि अच्छा सुनने वाला बनने के लिए हमें करना क्या है, है ना, कितने टाइप की लिसनिंग होती है, कैसे कैसे लोग सुनते हैं उसको। तो जो प्रॉपर वर्ड है उसके लिए एक्टिव लिसनिंग, कि हम एक्टिवली कैसे सुने, मतलब ध्यान से कैसे सुने, क्योंकि लिसनिंग जो है ना वो हमेशा इज नेवर पैसिव, हियरिंग इज पैसिव, वो आप चाहो या ना चाहो, आप सो रहे हो तब भी हियरिंग होगी, आपके कान को मैसेज जाएगा, आपके दिमाग को मैसेज भेजेगा कान, फिर आपकी चॉइस है आप उसे सुनना चाहते हो या नहीं, लेकिन लिसनिंग में ऐसा नहीं हो सकता, लिसनिंग हमेशा एक्टिव है। लेकिन इसके जब बहुत अगर डीप में जाओगे ना तो सोते में भी लिसनिंग हो सकती है, वो बहुत हाइटेंड अवेयरनेस है, एकदम जो टॉप अवेयरनेस जब आती है तो सोते में भी इंसान सुन सकता है। उसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, खासकर उषा बेन बहुत सुनाते हैं उस कहानी को, है ना, एक राजकुमार को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है एक साधु के पास, सुना होगा। तो वो साधु वैसे किसी को ट्रेनिंग नहीं देता, बड़ा अड़ियल टाइप का, पर जैसे तैसे मना के उसको साधु के पास भेजा, तो बोले बीच में खत्म नहीं, उसकी कुछ शर्तें हैं कि ट्रेनिंग बीच में खत्म नहीं कर सकते, वो चाहे कुछ भी हो जाए उसमें, मतलब वो जैसे डीओटी कंसीडर है, जान की पूरी बाजी लिखवा लेता है पहले से कि जान भी जा सकती है, इतनी सख्त ट्रेनिंग है। तो बोले ठीक है, वो राजकुमार बोला करेंगे कैसे भी, गया तो ट्रेनिंग का पहला चैप्टर, बोले मैं तुम्हारे को, मेरे हाथ में हमेशा तलवार होगी, काट लकड़ी की तलवार, मैं तुमको हमेशा मारूंगा, तुम्हें अपना बचाव करना है। हाँ ये है कि मैं तुम्हें मारने से पहले एक सेकंड पहले बोलूंगा जरूर कि मैं तुम पे आक्रमण कर रहा हूं। तो वो गया राजकुमार, तो पहले तो खाना खाए तो पिटाई, कुछ भी काम करे उसको काम के लिए बोले, जैसे वो काम करने लगे वो पीछे से आके उस पर बोला आक्रमण। स्टार्टिंग में तो उसे समझ में नहीं आया, पूरी हड्डी हड्डी दुखने लगी, फिर उसे समझ में आया, बोले अब बचना है ना तो और कोई तरीका नहीं है, कैसे भी सेव करना होगा। धीरे 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 वो 1-2 महीने में सीख गया पूरा कैसे बचना है। जैसे ही वो आक्रमण बोलता था उसके अंदर इतनी फुर्ती आ गई कि वो अपना बचाव कर लेता था। तो उसने बोला ठीक है तुम्हारा पहला चैप्टर पूरा हुआ, अब बोले दूसरा चैप्टर शुरू होता है। बोले वो क्या है, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब बिना बोले मारूंगा तुम्हें। तो वो खाना खाने बैठता, फटाक से पड़ी तलवार। तो शुरू के 10-15 दिन बड़ा परेशान रहा, फिर धीरे धीरे उसे समझ में आ गई इसी तरह पिटता रहा तो निबट जाऊंगा। तो जैसे ही वो आक्रमण करने के लिए तलवार उठाता था गुरु, उसको पता पड़ जाता था, उसकी अवेयरनेस जो चैतन्यता थी ना, दिन पे दिन सजगता बढ़ती जा रही थी, वो सुन लेता था, उसकी तलवार की आवाज से ही सुन लेता था वो कि उठने वाला है। तो जब वो इस पे भी पहुंच गया तो बोले तुम्हारा सेकंड चैप्टर ओवर, अब तीसरा चैप्टर शुरू होता है। बोले क्या? बोले अब तुम्हें सोते में भी मार पड़ेगी। सोते में भी मार पड़ेगी, ठीक है देखेंगे। तब तक सारे बुंड हील हो गए थे ना, तो फिर से पिटने के लिए तैयार। तो वो जैसे ही सोता गुरु कभी भी उठा के उसको मारने लग जाता था। तो उसने कहा अभी बचना है तो एक ही तरीका है। तो इतना सजग हो गया, उसकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई धीरे धीरे कि वो जैसे ही सोते में भी उसको मारने के तैयार होता था, वो सुन लेता था आवाज और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता था। तो सोते में भी लिसनिंग हो सकती है। जब ये हो गई तो फिर बोला अब अगला चैप्टर है तलवार तुम्हारी ओरिजिनल, अब अभी काट की तलवार हटा दिए और अब सीधी लोहे की तलवार। इस पे तो गए तो गए, तो इसमें तो शुरू से ही सजगता आ गई। बोले एक बार में ही चले जाएंगे तो सीखना है नहीं। तो उसने बोला जैसे ही वो आक्रमण करने को होता वो बचाव कर लेता। तो बोला अब तुम्हारा बस चौथा चैप्टर रह गया, वो मैं तुमको 2-4 दिन में सिखाऊंगा। चौथा चैप्टर क्या है? पता चल जाएगा, चिंता मत करो, कि 3 सीख ले तो वो भी सीख जाओगे। तो एक दिन वो साधु बैठा हुआ नहा रहा था, वो गुरु उसका, उसकी पीठ इसकी तरफ थी, इसके हाथ में तलवार थी, उसकी तलवार वहीं रखी हुई थी इसके पास, राजकुमार के पास। तो इसने सोचा ये मुझे तो इतना टेस्ट करता है, आज इसको भी टेस्ट कर लूं कि ये खुद भी इतना एक्टिव रहता है कि नहीं। उसने मुझे बहुत मारा है, मैंने एक आध तलवार मार दी तो क्या होगा। तो वो तलवार उठा के सोचता है कि आज मैं इस पर आक्रमण करूंगा। जैसे ही वो सोचता है उसका गुरु वहां से चिल्लाता है, नहीं बच्चे ऐसा मत करना। बोले ये तो बहुत पुराना बूढ़ा शरीर है, एक ही बार में मर जाएगा। तो वो कहता आपको कैसे पता चल गया? बोला यही तुम्हारा अंतिम चैप्टर है कि बोले तुम्हें दूसरों के विचार भी सुनाई पड़ने लग जाएंगे। तो अवेयरनेस इतनी भी आ सकती है कि हमें दूसरों के विचार भी, मतलब कर्म में आने से पहले ही हमारे को पता चल जाएगा। तो लिसनिंग भी सोते में भी हो सकती है। हम पीछे से ही चलेंगे। तो भी लिसनिंग में जो रिसीविंग स्किल्स हैं, लिसनिंग के जो कंपोनेंट है ना, कि सबसे पहला कंपोनेंट था हियरिंग। सबसे पहला जो सिंपल पैसिव हियरिंग है, साउंड आई हमारे कान में गई, कान ने उसका नर्व इम्पल्स बनाया और वो हमारे ब्रेन को दिया, अब आगे ब्रेन की चॉइस है। तो वहां तक तो हियरिंग हो गई। अब जब लिसनिंग होता है तो उसमें इसके साथ साथ हियरिंग भी एक ब्रॉड सेंस में हो जाती है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो, मतलब उसने जो शब्दों से कहा वो, प्लस उसका गेस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी, किस भाव से बोल रहा है, किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, वो सब भी लिसनिंग में आता है। इसके बाद जो सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग। जितनी भी हमारे को ये वर्बल नॉन वर्बल जितने भी मैसेज मिले उनको सबको कॉम्प्रिहेंड करना है और उसका एक मीनिंग निकालना है कि मतलब जो मुख से बोला गया और जो गेस्चर था उसको मिला के इसका क्या मीनिंग हुआ। इसके बाद आता है हमारा इंटरप्रिटेशन, इसका एक सिनोनिम है HUIER, है तो पहला हियरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है इंटरप्रिटेशन। अब ये जो हमने जितना भी कंपाइल किया उसका सब कुछ मिला के उसका एक इंटरप्रिटेशन क्या है। इसमें इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्या होता है, बाबा बोलते हैं कि सब अपने अपने मन से इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। बाबा ने जैसे एक मुरली में बोला कि आप कहीं बाहर हो और बहुत इमरजेंसी है तो आप दाल चावल लेके खा सकते हो, है ना। तो इंटरप्रिटेशन जिनने निकालना था, किसी ने ऐसे भी निकाल लिया कि होटल में जाके आराम से बोले दाल चावल तो हम खा ही सकते हैं, बाबा ने बोला है। तो ये इंटरप्रिटेशन निकालने के ऊपर है कि हम बात को किस तरह ले रहे हैं और कौन अपने मन से, मतलब श्रीमत में कैसे मनमत लोग मिलाते हैं, ज्ञान का उल्टा यूज कैसे करते हैं, वो सब इधर आ जाता है। इसके बाद फिर उसको ओपन माइंड से इवेल्युएट करना है कि जो बोलने वाला था वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। कोई एक उसकी लाइन पर कंक्लूजन निकालने की बजाय, या जैसे ही उसने स्पीच स्टार्ट की उसका उसके ऊपर एकदम जंप करने की बजाय हम जब पूरा सुन के उसको इवेल्युएट करके एक पर्टिकुलर उस मैसेज के आना था वो निकालते हैं। उसके बाद हमारी चॉइस है हम रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या नहीं, मतलब स्पीकर को ये बताना चाहते हैं कि हमें आपकी बात समझ में आई या नहीं। तो उसमें हमारे कुछ क्लैरिफिकेशन करना है वो भी कर सकते हैं, कुछ हमारे को पूछना है या किसी चीज पर अपना कुछ मत उससे क्लैरिफाई करना है, वो सब इसमें आता है। और एक और चॉइस होती है रिमेम्बर, आप चाहें तो बात को दिमाग में स्टोर कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते, चाहें तो सबकॉन्शियस माइंड में भी ले जा सकते हैं, चाहें तो कॉन्शियस माइंड में थोड़े दिन रख के डिलीट मार सकते हैं, वो अपनी चॉइस होती है। तो ये रिसीविंग स्किल्स में, और जो डिफरेंट टाइप की लिसनिंग होती है ना बहुत फास्ट करेंगे, रिलेशनल जो रिसीविंग स्किल्स हैं उसमें बहुत टाइप की होती है। एक तो नॉट लिसनिंग, जैसे अभी इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है और मुझे जाके बिठा दिया, मेरे लिए उस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर मैं, एक स्टाइल है ये कि मैं बैठा हूं लेकिन सुनना मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरा होता है स्यूडो लिसनिंग, फेक कर रहे हैं कि हमें मालूम है टॉपिक अनइंटरेस्टेड है लेकिन सामने वाले को दिखाना है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि बैठना ही पड़ जाता है ना, उठा के बॉस ने ऑर्डर कर दिया है बैठ गए, तो वो स्यूडो लिसनिंग होता है। फिर एक होता है डिफेंसिव लिसनिंग, ये एक्चुअली स्पीकिंग की बैड हैबिट है। क्या होता है, कोई इनोसेंट रिमार्क किसी ने बनाया, जैसे मैंने ये बोला कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो क्लास में नोट्स लेते हैं, तो जो नोट्स ले रहा था उसने उसे अपने ऊपर पर्सनल ले लिया। एक्चुअली इट वॉज जनरल स्टेटमेंट लेकिन उसने उसको अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसे जिन लोगों को इनसिक्योरिटी होती है ना वो इस टाइप से बहुत हर्ट होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि मेरे को टारगेट करके बोला जा रहा है, बट एक्चुअली वो जो स्पीकर है वो एक जनरल स्टेटमेंट बना रहा होता है। फिर अप्रिसिएटिव लिसनिंग होती है, एक जैसे हम कहीं गेम्स वगैरह देखने जा रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या यहां पर भी कोई कुछ चल रहा है छोटा मोटा गेम, तो हमें अप्रिशिएट करना होता है, हम टाइम पास करने गए लेकिन, तो फिर हम सुनकर मतलब उनका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ बोल सकते हैं। फिर है लिसनिंग विद एम्पैथी यानी कंपैशनेट लिसनिंग, जो कि एक मॉड्यूल में हमारे ये लिसनिंग वो है जिसमें कि हम जब स्पीकर बोल रहा है कोई तो पूरी तरह हम उसमें ऑनेस्टली डूब जाते हैं, अपने बायस्ड को एक तरफ रख देते हैं, अपने जो मान्यताएं उन सबको एक तरफ रख देते हैं, पूरी तरह वो जैसा बोल रहा है उसको बिल्कुल वैसा सुनते हैं। दैट इज कंपैशनेट या एम्पैथिक लिसनिंग। एक होता है थेरेप्यूटिक कैथार्टिक लिसनिंग, काउंसलर होते हैं ना वो यूज करते हैं इसको, पर्टिकुलरली वो लोग जो जीवन के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जिंदगी की जो चीजें हैं ना रोजमर्रा की उन्हीं के साथ कोप अप नहीं कर पाते, तो उन लोगों को काउंसिल करने के लिए काउंसलर्स की ये टेक्निक है। एक कुछ होते हैं कंटेंट रिसीविंग स्किल्स लाइक इंटेंसिव लिसनिंग या ऑफेंसिव लिसनिंग। तो उसमें क्या होता है, जो सुनने वाला है वो स्पीकर की सिर्फ वही बातें सुनता है जिसको कि वो बाद में उसके अगेंस्ट यूज कर सके, बोले आपने ऐसा कहा था वो ऑफेंसिव लिसनिंग हो जाती है कि बोले इसकी कोई ना कोई एक बात पकड़ना है जो बाद में इसको सुनना है, तो एक बोगी लिस्निंग है। फिर एक इंसुलेटेड लिस्निंग होता है जिसमें कि जैसे बोला आपको कि भाई क्या, तो मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो मेरा तो टॉपिक नहीं था या मेरे मतलब का नहीं था, मैं तो ऐसे ही आके बैठ गया था, तो वो इंसुलेटेड लिस्निंग है कि बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कि मैंने सुना या नहीं। सिलेक्टिव लिस्निंग होता है एक कि हम पूरे स्पीच में सिर्फ वही बातें सुनना चाहते हैं जो हमारे मतलब की है, हमने दो चार बातें अपने मतलब की ले ली बाकी का छोड़ दिया। एक होती है बॉटम लाइन लिसनिंग है ना कि लास्ट में बिल्कुल अच्छा ठीक है, तो पूरा डेढ़ घंटे दिमाग मत का, सिर्फ कंक्लूजन बता दे दो लाइन में क्या है, दैट इज बॉटम लाइन लिसनिंग। फिर एक होती है कोर्ट रिपोर्टर सिंड्रोम है ना, जैसे कोर्ट में क्या होता है जब जज साहब निर्णय सुनाते हैं तो वो जो उनका स्टेनो होता है जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं बिल्कुल एज इट इज वो लिखता जाता है, बर्बेटिम जैसा मुंह से निकला बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे ही कुछ लोग स्पीकर जो बोल रहा है बिल्कुल जो कहते हैं उसको छापते चले जाते हैं। फिर होता है एक इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग कि जो भी स्पीच कोई दे रहा है या बोल रहा है उसमें से एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं, तो दैट इज इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ और भी है, क्रिटिकल इंसिडेंस लिसनिंग है, खासकर जो डिटेक्टिव वगैरह होते हैं ना या पुलिस होती है, किसी एक कोई इंसिडेंस घटना हुई तो उस घटना में क्रिटिकल पॉइंट सुनना होता है, तो वो बड़े ध्यान से उसके ऊपर उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जिससे कोई सबूत या कोई ऐसा वीक पॉइंट कहीं से मिल जाए। तो ये डिफरेंट टाइप की लिसनिंग स्किल्स है। अब आता है गुड लिसनर और बैड लिसनर, जो 10 कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ लिसनिंग है ना, कि अच्छा लिसनर बनने के लिए क्या क्या करना है। तो उसमें जैसे सबसे पहला जो कार्डिनल पॉइंट है वो है फाइंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसमें दो, अब दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, पुअर लिसनर इसमें क्या करते हैं और जो गुड लिसनर है वो क्या करते हैं। जो पुअर लिसनर होते हैं, मतलब जो बैड लिसनर है, वो क्या करते हैं कि जो ड्राई टॉपिक है, कोई मतलब टॉपिक ऐसा है कभी कभी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ रिक्रिएशन नहीं है, तो वो उस टॉपिक से ट्यून आउट हो जाते हैं, मतलब बैठेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। जो अच्छा लिसनर होगा वो क्या करेगा, वो उस अपॉर्चुनिटी बोले बैठा तो हुई 45 मिनट खराब तो करनी है, तो उस स्पीच में से जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी ना वो उसको ग्रैस्प कर लेगा। तो यहां डिफरेंस आता है कि टॉपिक मतलब आप जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दूसरा है जज द कंटेंट नॉट द डिलीवरी। जो पुअर लिसनर है वो क्या करेंगे, अरे ये तो ऐसे बोल रहा था, उसके बोलने में मजा ही नहीं आता, वो क्लास में बांध नहीं पाता या वो बांध नहीं पाती है, उसके बोलने में कुछ सुनना नहीं आता, ये पुअर लिसनिंग है बेटा। और जो अच्छे लिसनर है वो क्या करता है, वो जो कंटेंट है स्पीच का सिर्फ उसी को जज करता है, स्पीकर को कुछ नहीं करता कि स्पीकर कैसे बोल रहा है, उसकी बोलने की लैंग्वेज प्रॉपर बोल पा रहा है, एक्सेंट प्रॉपर है या नहीं, या कुछ वर्ड्स गलत भी बोल रहा है, वो उस चीज को इग्नोर करते जाते हैं, जो उसमें से कंटेंट्स है सिर्फ उसको लेते जाते हैं। तीसरा जो अच्छा गुड लिसनर बनने का पॉइंट है, होल्ड योर फायर है ना। जो बैड लिसनर है वो क्या करेंगे, किसी भी एक टॉपिक को लेकर आर्ग्यू करने लग जाएंगे, या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, या किसी एक वर्ड को लेकर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर जो गुड लिसनर है वो इन सब चीजों को धीरे धीरे इग्नोर करना सीख जाता है, बोले इससे हमारे को कोई मतलब, उससे सिर्फ कंटेंट से मतलब है, तो वो अपने अंदर अपने ऊपर ना कंट्रोल रखता है पूरा। फिर लिसन फॉर आइडियाज भी था, कि जो पुअर लिसनर है वो केवल फैक्ट्स पे जाते हैं, बोले आपने ये बोला ये लाइन तो ठीक है, पर बाकी आप जो बोल रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो गुड लिसनर है वो क्या, पूरे टॉपिक से का होल आइडिया क्या था सिर्फ उसको सुनता है। तो जिससे कि ये जो रामायण और वाली बात हुई ना, कि अगर आप सिर्फ इसी बात पर अट गए कि रामायण तो कहानी है तो आप छोड़ के ही चले जाओगे, लेकिन जब आपने उसको पूरा सुना तो आप ज्ञान में अपने आप चलने लग गए, क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आया ना कि जो बोल रहा है कि एक्चुअली वो सुनते थे, लेकिन वैसा सुनने में हमारे को भी नहीं लगता था, लेकिन जब इसका इंटरप्रिटेशन बाबा ने बताया तो हमें लगा कि हाँ सही बात यही है। तो जो गुड लिसनर है वो पूरा आइडिया सुनते हैं। फिर बी ए फ्लेक्सिबल नोट टेकर, जो हमने अभी नोट्स की बात की, नोट्स लिखने में बहुत ज्यादा वैसा नहीं होना चाहिए रिजिड की, आप एक लाइन लिख रहे हो पता चला बाकी की 6 लाइनें आपकी रह गई। तो जो अच्छे लिसनर है वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं। सिक्स्थ है वर्क एट लिसनिंग। जो पुअर लिसनर है वो क्या करते हैं, कोई एनर्जी नहीं होती, बस ठीक है बैठे हैं, घड़ी देख ली 6:30 भी बजे अभी तक। पर जो गुड लिसनर है वो क्या है, जो पूरा अटेंशन देते हैं है ना, कि जो भी स्पीकर बोल रहा है क्या उसकी गेस्चर थी, किस जगह उसकी टोन ऊपर गई, किस जगह नीचे गई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमारे को जब सुनते हैं तो सुनने वाले को भी वर्क करना होता है, बोलने वाला तो कर ही रहा है। फिर रेसिस्ट डिस्ट्रेक्शन, जितने भी डिस्ट्रेक्शन है, जो पुअर लिसनर है वो क्या करेंगे, वो खुद ही डिस्ट्रेक्शन करने लग जाते हैं है ना, सामने वाले को पिंच कर दिया, जैसे हम पढ़ते थे हवाई जहाज फेंकते थे पीछे से। और जो अच्छे लिसनर हैं वो डिस्ट्रेक्शंस को रेसिस्ट करते हैं, अगर कोई कर भी रहा है तो उठ के दूसरी जगह बैठ के सुनेंगे, वो खुद तो डिस्ट्रेक्शन करेंगे ही नहीं, बाहर की आवाजें आ रही हैं तो इग्नोर करना सीख जाते हैं। फिर है एक्सरसाइज योर माइंड। जो पुअर लिसनर है, अगर कुछ भी ऐसा मटेरियल स्पीच में आ रहा है जो उनको थोड़ा सा भी समझ नहीं आया तो वो उसी टाइम पर सुनना छोड़ देते हैं, तो फिर वो आगे का तो बिल्कुल ही ऊपर से चला जाता है। लेकिन जो गुड लिसनर है वो मालूम है उसको मैं अपना टाइम दे रहा हूं, तो वो कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मटेरियल हो वो उसमें कुछ ना कुछ अपना दिमाग भी जोड़ने लगता है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर कीप योर माइंड ओपन ऑलवेज, मतलब नेवर जज, ओपन माइंड से सुनना है, कोई भी जो बोल रहा है उसको पुरानी मान्यताओं को उसके ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हमें तो ये पता था या हमने पहले ये सुना था किसी से, अब ये बोल रहा है तो हम वही सुनना बंद कर रहे हैं। उसकी स्पीच को पूरा सुनो, फिर उसके बाद उसको डिसाइड करो। और लास्ट वही था कि ये जो हमारे थॉट की स्पीड है बहुत ज्यादा है, 800, सुनने की स्पीड है हमारी 400, बोलने वाले की स्पीड है 150, तो जो बीच का टाइम है उसमें हमारे को क्या करना है? तो उसमें हमारे को जो भी बोल रहा है उसको समराइज करते जाना है। हमारे को अगर लास्ट में कोई चीज मुझे पूछना है, क्लियर नहीं है, तो वो पॉइंट भी मुझे उस समय माइंड में उसी टाइम में नोट करना है जिससे कि मैं बाद में पूछ लूं, नहीं तो कई बार हम यही भूल जाते हैं हमें पूछना क्या था। तो ये जो टाइम होता है बीच का उसको पूरा यूटिलाइज करना है। तो ये जो 10 पॉइंट है अगर वो हम ध्यान में रखेंगे तो देन वी कैन बिकम ए वेरी गुड लिसनर। इसके अलावा और जो छोटे छोटे चीज जैसे थे, एक तो बीच में बात नहीं करना चाहिए। जब भी कोई बोल रहा है तो हम वहां सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, तो हमें सिर्फ सुनना है। फिर अपने आप को प्रिपेयर करना होता है सुनने के लिए, प्रिपेयर योर सेल्फ, रिलैक्स होकर के सुनना है, एकदम रिलैक्स कि ठीक है मैं अब सुनने जा रहा हूं और मेरा पूरा अटेंशन फोकस जो है वो सुनने पर रहेगा। फिर वही अवॉइड जजिंग स्पीकर टू सून। क्या होता है जैसे स्पीकर ने बोलना शुरू किया हम थोड़ी देर में उसको जज करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है। डोंट फेक अटेंशन, है ना, कभी भी अगर आपको सुनने का मन नहीं है तो फालतू का अटेंशन फेक करने का कोई जरूरत नहीं है कि है ना नहीं हम सुन रहे हैं आपकी बात बड़े ध्यान से और हिला रहे हैं। कभी कभी वो स्पीकर बोल नहीं पाता, उसके सेंटेंस को पूरा करने लग जाते लोग, है ना, सुना होगा खासकर सत्संग में, वो उसके सेंटेंस की लास्ट लाइन खुद ही बोलने लग जाते हैं। दीज आर वेरी बैड हैबिट, ये नहीं करना चाहिए। लिसन टू आइडियाज नॉट द फैक्ट्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमेशा अलर्ट रहना है कि जो एक तो मुंह से बोला जा रहा है, साउंड आ रहा है, और दूसरा उसका गेस्चर, उसकी टोन, इन चीजों को, नॉन वर्बल जो भी चीजें ना उनके लिए हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको आंखों से देखना है बड़े एक्टिवली। एक आई कांटेक्ट का है कि स्पीकर से आई कांटेक्ट आप बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको भी लगता है कि हाँ सुन रहा है। लेकिन उसमें एक चीज और है, उसको घूरना नहीं है। फिर अगर घूरते रहेंगे तो फिर वो ऑफेंसिव हो जाएगा, है ना। हाँ, उसका फिक्स है, मतलब अगर आप किसी भी स्पीकर को 3 सेकंड से ज्यादा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो घूरना हो जाता है, दैट इज हर्टिंग। तो वो भी ध्यान रखना है। हाँ, मतलब 3 सेकंड ऐसे नहीं, मतलब जो देखा हाँ ठीक है, पर ऐसा नहीं कि जस्ट आप एक ही पोस्चर में बैठे उसको घूर ही रहे हो, तो वो धीरे धीरे उसका फिर फोकस आप पर चला है, वो अटेंशन। देन वी शुड लिसन विदाउट इंटरप्शन, कभी बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, विदाउट थिंकिंग। कई बार क्या होता है हम सुन रहे हैं लेकिन हमारा भी टॉपिक हमें भी बोलना है नेक्स्ट, तो उस टाइम सबसे खराब होता है, हम सामने वाला क्या बोल रहा है उसको तो कभी सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में पूरी हमारी क्लास चल रही होती है। तो जब भी सुनना है ना उस समय आपकी थिंकिंग बंद होने, क्योंकि अगर आप अंदर आपके आवाज चलती रहेगी, थिंकिंग मतलब अंदर आप बातें कर रहे हैं, तो फिर दूसरे की आवाज तो आपको कभी सुनाई पड़ेगी नहीं। और ये इसी पर फोकस पूरा, महावीर ने जो सुनने के ऊपर बोला है पूरा का पूरा फोकस उनका इसी पर है कि आप अपने अंदर का जो नाद है ना पहले उसको बंद करो। जब तक आप अपने अंदर ही बोलते रहोगे तो आप बाहर वाले को सुन ही नहीं सकते, क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही चीज सुन सकते हो। दूसरा क्या, आप अपने अंदर सुनते सुनते अपने ही नाद जो है ना उसको बार बार सुनते सुनते इतने बोर हो जाते हो, आप बाहर वाले का सुनना नहीं चाहते, आपका अंदर का चल रहा है तो आपको नींद आ जाती है। नींद आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके अंदर खुद चल रहा होता है ना, उससे आप पूरी तरह बोर हो चुके हो, उसको सुनना ही नहीं चाहते, पर फिर भी वही चल रहा है तो इसलिए आप सो जाते हो। तो सुनने की जो प्री रिक्विजिट है विदाउट थिंकिंग, उस समय कुछ ज्यादा सोचते नहीं है। फिर रिमूव डिस्ट्रैक्शन, अगर ऐसा लगता है कि भाई कोई साउंड हो रही है, टीवी है, उसको बंद कर दो। स्पीकर को भी कंफर्टेबल बनाने का है कि कोई ज्यादा साउंड हो रही है तो उसको भी डिस्टर्ब ना करे। बी पेशेंस, है ना, पूरी स्पीच को सुनना है, पेशेंस से सुनना है, घंटी नहीं बजाना बीच बीच में, एक बार बजा दिया बहुत है। और पर्सनल प्रेजुडिस जो है ना उनको अवॉइड करना होता है कि हमारे जो आइडियाज है उनको बीच में कभी नहीं लाना होता है। अब वैसे तो बहुत है, पर जैसे कुछ और जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि ये हमेशा याद रखना है कि भगवान ने हमें दो कान दिए और एक मुंह दिया तो एटलीस्ट 50% रिडक्शन तो ये सोच के ही हो सकता है कि हमें जितना बोलना है उसका डबल सुनना है। ये बहुत कांस्टेंट रिमाइंडर है। चाहते तो एक कान दे सकते थे ना हाँ, और कान की एक और जो पिक्यूलरिटी है कि वो कभी बंद नहीं होता है ना। आप सोते में भी कान खुला है, आंख फिर भी आपको क्या है, आंख देखने के लिए आपको एक्टिविटी करना पड़ेगी, पलक खोलना पड़ेगा। या आपको मुझे नहीं देखना है, मैं आपको इधर मुंह कर लूं, मैं नहीं हो जाएगा, मैं आपको नहीं देख रहा हूं। लेकिन सुनने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सुनना इज दैट इम्पोर्टेंट, मतलब उसको भी पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, ईश्वर को भी पता है। इसलिए उसने कान बंद करने की कोई तरकीब नहीं दी कि बोले आप नहीं सुनना चाहते तो उंगली भी लगाओ तो भी आवाज तो जाएगी। तो सुनना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हाँ, और एक जो कोटेशन था वो ये कि इफ यू वॉन्ट टू वॉक इन अदर शूज तो पहले अपने जूते निकाल लो। मतलब आप किसी और के जूते पहनकर चलना चाहते हो तो पहले अपना जूता निकालो, तभी उसका पहन पाओगे। तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपके अंदर जो भरा है पहले उसको हटाओ। बाबा ने क्या कहा था, अब तक जो भी पढ़ा है शास्त्रों में, जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, अब मेरी सुनो। तो उसका मीनिंग बहुत डीप है। वो ऐसा नहीं है कि बाबा बोल रहा है मेरी सुनो और किसी की नहीं सुनोगे, कोई वो ऐसा कोई तुगलकी फरमान नहीं है। उसका मतलब है, क्योंकि जब तक आप उसको हटाओगे नहीं ना जो भरा हुआ है, तब तक आप बाबा को सुन नहीं सकते, है ना। मुरली सुनना बहुत आर्ट है। कैसे मुरली सुनना चाहिए, मुरली में हम मनन चिंतन इतना करते हैं, इतना शब्दों पर जाते हैं, एक एक वर्ड के 20-20 मीनिंग निकालते हैं। एक दिन क्लास होगी, तीसरे दिन जो दूसरी तीसरी क्लास होती है तो पहली क्लास पूरी तरह क्लीन होती है ना। अभी अगर पूछो 15 दिन पहले कौन सी क्लास थी तो टॉपिक भी याद नहीं आएगा, इतना मनन चिंतन में टाइम लगाते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो बिल्कुल PhD स्कॉलर हैं, 8 की माला में वही आएंगे बस। पर ऐसा है क्या, ऐसा है? हो सकता है 8 की माला में वो आए जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जो मुरली के कभी कभी किसी वर्ड का मतलब भी नहीं जानते हो, वो 8 की माला में आ सकते हैं। तो शब्दों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो मनन चिंतन है जितना हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है मनन चिंतन, पर वो उसका एक बौद्धिक स्पष्टता के लिए इम्पोर्टेंस है कि आपको वो चीज एकदम क्लियर हो जाएगी ना, जैसे बिल्कुल काला बादल छठा सूर्य दिख गया सब। लेकिन वो जो बौद्धिक स्पष्टता है वो बहुत ज्यादा काम की नहीं है, वो आपके किसी काम आने वाली नहीं है ज्यादा। तो काम क्या आने वाला है, जब बाबा मुरली सुना रहे हैं तो हमें कैसे सुनना है। अगर हम बहुत ज्यादा समझने में लग गए ना वर्ड्स को तो हम बाबा को कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि 5 साल बाद मुरली पूरी रिपीट हो रही है, और बहुत सी मुरली में भी देखो बातें कितनी रिपीट होती हैं। तो मतलब तो जो हमें समझना था हम समझ चुके हैं, पर फिर भी बाबा सुना रहा है वही चीज क्यों, अप्लाई करने के लिए। अप्लाई हम क्यों नहीं कर पा रहे, एक बार जब बाबा ने बोली आत्माभिमानी बनो तो क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि अंदर नहीं जा रहा है। तो कब होगा वो, कैसे हम कैसे सुने मुरली। क्लास पूरी इसीलिए डिवोटेड है, जो लोग बोलते ना मुरली में बाबा क्या बोलता है रोज रोज वही बात, हम जो सुन लिए मुझे पता है पूरी मुरली। तो क्या है एक्चुअली मुरली सुनाता है बाबा, तो कैसे सुनना चाहिए। सुनना ये है कि बहुत ज्यादा शब्दों और उनके अर्थों पे नहीं जाना है पहली बात, क्योंकि वो शब्द और अर्थ हमारे काफी समझे हुए हैं ऑलरेडी, हमने कई बार सुन लिए समझ लिए। तो अब करना क्या है, जब बाबा मुरली सुनाता है तो हमें उसके शब्दों पर ध्यान न देके हमें कैसे सुनना है कि जैसे कोई कवि कविता गा रहा है या कोई गायक कोई गाना सुना रहा है। तो जब हम गाना सुनते हैं तो हम ज्यादातर साउंड सुनते हैं, है ना, हम उसके बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं निकालते गानों के, और हम उसमें क्या नशे में झूमने लगते हैं, है ना, हम कई जो डांस करने लग जाते हैं पैर। तो ऐसे ही जब बाबा मुरली सुनाता है तो हमारे को एकदम से ऐसे सुनना है कि वो कोई कविता सुना रहा है। बस धीरे धीरे क्या होगा कि मैं हूं और बाबा है, फर्स्ट स्टेज ये आती है कि उसमें हम इतना खो जाते हैं कि बस मैं हूं और बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद हम इससे भी आगे बढ़ जाते हैं स्टेज में, तब पता चलता है कि मैं और बाबा भी नहीं रहे, सिर्फ एक ही हो गया, है ना, कंबाइंड हो गए। तो वो जैसे बाबा बोलते हैं अनहद नाद सुनना है, अनहद नाद वर्ड्स ना सुन के एक तरह का नाद है जो कंटिन्यूस फिर बसता ही रहेगा पूरे दिन, मेरे दिमाग में वही धुन से एक सवार हो जाती है, वो बसता रहता है। जब उस स्टेज पे हम पहुंचते हैं तो एकदम से एकदम एकांत हो जाता है, फिर वहां कुछ नहीं बचता, जैसे प्रलय हो गई दुनिया में, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ मैं और बाबा एक कंबाइंड फॉर्म में सुन रहे हैं। तो जो मुरली है ना वो ध्यान हो जाती है। मुरली में बाबा ने दो बार दो बातें कही, एक बार बोला जो मुरली का टाइम आप सुनते हो वो आपका योग में काउंट नहीं होता, और एक बार बोला कि मुरली आपकी पूरी काउंट होती है। तो कब काउंट नहीं होती है कब काउंट होती है, कोई बोल रहा है भगवान बोल रहा है बहुत सोच समझ के बोलता है, वो जो भी बोलता है उसका 100% मीनिंग होता है। तो दोनों चीजें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, एक बार बोल रहे हैं कि नहीं दूसरी बार बोल रहे हैं होता है। तो जब हम उसको इस तरह सुनते हैं कि बिल्कुल जैसे बोले ना कि वो एकदम प्रियतम गाना सुना रहा है और मैं उसमें इतना खो गया कि मैं और बाबा कंबाइंड हो गए, मतलब दो भी नहीं रहे हम एक हो गया, और फिर उसके बाद जो एकांत आता है ना, अगर ऐसे मुरली सुना तो वो पूरी ध्यान में काउंट हो जाती है, वो पूरी सुना काउंट। उसके बाद फिर होती है आनंद की स्टेज सुनाई जाती है, जैसे बोलते ना अतिंद्रिय सुख और वो वाला जो आनंद है, जैसे गोपियां क्या समझती थी, कृष्ण मुरली बजाता होगा जो गायन है तो कौन सा वो वर्ड्स को समझने वाली है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर फिर भी वो बिल्कुल नशे में क्यों खो जाती थी, क्योंकि वो मुरली के वर्ड्स को नहीं सुनते हैं, वो मुरली मतलब अनहद नाद, वो जो उसके अंदर आ रहा है वो धीरे धीरे उसमें इतना खो जाते हैं कि जैसे गाने सुनने में हम कभी इंटरप्रिटेशन नहीं निकालते गाने के वर्ड्स का। कई बार लोग पूरा का पूरा गाना आता होगा लेकिन उन्हें बिल्कुल मतलब नहीं पता होता कि इस गाने के वर्ड्स का मतलब क्या है। तो मुरली को इसी तरह सुनना है। ओके, ओम शांति। Oh, shit.